नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। लर्न रोबोटिक्स विद रेस्पबेरी पाई मैट टिमन्स ब्राउन की शुरुआती स्तर की व्यावहारिक रोबोटिक्स पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को तैयार किट चलाना नहीं, बल्कि रेस्पबेरी पाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और पाइथन के सहारे अपना चलता, महसूस करता और निर्णय लेने जैसा व्यवहार करने वाला रोबोट बनाना सिखाना है। पुस्तक एक दो पहियों वाले रोबोट से आरंभ होती है और हर अगले चरण में उसी मशीन की क्षमता बढ़ाती है। पहले रेस्पबेरी पाई की तैयारी और बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, फिर ढांचा, मोटर नियंत्रण और ऊर्जा की जरूरतें। इसके बाद सेंसर आधारित बाधा परिहार, रंगीन LED और ध्वनि, लाइन फॉलोइंग तथा कैमरे के साथ कंप्यूटर विजन जैसे अनुप्रयोग जोड़े जाते हैं। इस क्रम का महत्व यह है कि कोड, सर्किट और यांत्रिक बनावट को अलग अलग विषय नहीं माना गया है। पाठक देखता है कि किसी रोबोट का व्यवहार विद्युत आपूर्ति, वायरिंग, सेंसर संकेत और प्रोग्राम के संयुक्त प्रभाव से बनता है। पुस्तक नए मेकर, विद्यार्थियों, विद्यालयी प्रयोगशालाओं और ऐसे शौकिया पाठकों के लिए लिखी गई है जिनके पास पहले से रोबोटिक्स अनुभव नहीं है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले क्रमिक निर्माण के माध्यम से रोबोटिक्स की पूरी प्रणाली समझना। पुस्तक की प्रमुख पद्धति एक ही रोबोट को चरणों में विकसित करना है। पाठक पहले ऐसा दो पहियों वाला आधार बनाता है जिसे रेस्पबेरी पाई नियंत्रित कर सके और फिर उसमें नए कार्य जोड़ता है। यह संरचना महत्वपूर्ण है क्योंकि रोबोटिक्स में यांत्रिक ढांचा, विद्युत सर्किट और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मोटर का कोड तभी अपेक्षित परिणाम देगा जब मोटर ड्राइवर, बिजली स्रोत, ग्राउंड कनेक्शन और पहियों की भौतिक व्यवस्था सही हो। इसी तरह सेंसर का उपयोग केवल उसका डेटा पढ़ लेने से पूरा नहीं होता, उस डेटा के आधार पर गति या दिशा बदलने का तर्क भी चाहिए। पुस्तक इन निर्भरताओं को काम करते हुए प्रोजेक्ट में रखती है। अध्यायों का क्रम भी सीखने का बोझ नियंत्रित करता है। आरंभ में पाठक पाई तैयार करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा समझता है, फिर निर्माण और गतिशीलता आती है। उसके बाद स्वायत्त व्यवहार वाले फीचर जोड़े जाते हैं, इसलिए हर नई क्षमता पिछले काम का परीक्षण भी बन जाती है। यह किट केंद्रित मार्गदर्शिकाओं से अलग है, जहां तैयार हार्डवेयर से तुरंत परिणाम तो मिल सकता है पर उसके भीतर की प्रणाली स्पष्ट नहीं होती। यहां रोबोट का पूर्ण रूप शायद औद्योगिक उत्पाद जैसा सुघड़ न हो, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया समस्या पहचानने और उसे सुधारने की वास्तविक क्षमता विकसित करती है। दूसरा, वायरिंग, प्रतिरोधक और बिजली प्रबंधन को रोबोट के व्यवहार से जोड़ना। पुस्तक रोबोटिक्स को केवल पाइथन प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं करती। इसमें पुर्जों को जोड़ने, प्रतिरोधक लगाने, वोल्टेज रेगुलेटर के उपयोग और आवश्यक शक्ति का अनुमान लगाने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आधार शामिल है। यह चयन व्यावहारिक है क्योंकि छोटे रोबोटों की बहुत सी विफलताएं कोड में नहीं बल्कि बिजली और कनेक्शन में होती है। मोटर को अपेक्षाकृत अधिक धारा चाहिए, जबकि रेस्पबेरी पाई के पिन सीधे मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इसीलिए नियंत्रण सर्किट, उचित आपूर्ति और सुरक्षित कनेक्शन को समझना जरूरी है। पुस्तक के सर्किट आरेख पाठक को केवल तारों की सूची नहीं देते, बल्कि बने हुए सर्किट के पीछे का सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिरोधक क्यों लगाया जाता है, साझा ग्राउंड का क्या अर्थ है और पावर की सीमा किस तरह हार्डवेयर के चयन को प्रभावित कर सकती है। यह दृष्टि आगे के प्रयोगों में उपयोगी है। कोई पाठक LED, स्पीकर, नया सेंसर या दूसरी मोटर जोड़ना चाहे तो वह केवल निर्देशों की नकल पर निर्भर नहीं रहता। परिशिष्टों में रेस्पबेरी पाई GPIO आरेख, प्रतिरोधक मार्गदर्शिका, सोल्डरिंग और प्रोग्राम को स्टार्टअप पर चलाने की जानकारी भी इसी आत्मनिर्भरता को समर्थन देती है। तीसरा, पाइथन और GPIO से गति को नियंत्रित करने की आधारभूत भाषा। रेस्पबेरी पाई को रोबोट का नियंत्रक बनाते हुए पुस्तक पाइथन को मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल करती है। इसका लक्ष्य सामान्य सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं बल्कि कोड को भौतिक क्रिया से जोड़ना है। पाठक प्रोग्राम के माध्यम से GPIO पिनों की स्थिति बदलता है और यही संकेत मोटर नियंत्रण व्यवस्था तक पहुंचकर रोबोट को आगे, पीछे या मोड़ने में सक्षम बनाते हैं। यहां महत्वपूर्ण सीख यह है कि प्रोग्रामिंग का परिणाम स्क्रीन पर पाठ या चित्र भर नहीं है बल्कि समय, दिशा और गति से जुड़ी वास्तविक मशीन प्रतिक्रिया है। मोटर चलाने के बाद परीक्षा अनिवार्य हो जाता है। यदि रोबोट गलत दिशा में घूमे, आसमान चले या अपेक्षित गति ना पकड़े तो कारण कोड, वायरिंग, मोटर कनेक्शन या ऊर्जा आपूर्ति में हो सकता है। पुस्तक का प्रोजेक्ट आधारित ढांचा इस तरह की जांच को सीखने का हिस्सा बनाता है। रिमोट नियंत्रण के लिए V-रिमोट का उपयोग भी मानव इनपुट और मशीन प्रतिक्रिया के संबंध को सरल उदाहरण में दिखाता है। बाद के स्वायत्त अध्यायों के लिए यह आधार जरूरी है। जब तक पाठक निर्देशानुसार मोटर नियंत्रित करना नहीं समझता, तब तक सेंसर के संकेत पर विश्वसनीय निर्णय लेने वाला रोबोट नहीं बना सकता। इस अर्थ में पाइथन यहाँ अमूर्त भाषा नहीं, हार्डवेयर को व्यवस्थित ढंग से आदेश देने का माध्यम है। चौथा, सेंसर आधारित बाधा परिहार और लाइन फॉलोइंग से स्वायत्तता की शुरुआत रोबोट के चलने और रोबोट के स्वायत्त ढंग से चलने में बुनियादी अंतर है। पुस्तक इस अंतर को बाधा परिहार और लाइन फॉलोइंग परियोजनाओं के माध्यम से समझाती है। बाधा परिहार में रोबोट को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में सेंसर से संकेत मिलता है। प्रोग्राम को उस संकेत की व्याख्या करके गति घटाने, रुकने, पीछे होने या दिशा बदलने जैसा निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए यह अध्याय केवल सेंसर जोड़ने का नहीं, मापन को व्यवहार में बदलने का अभ्यास है। सेंसर रीडिंग पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकती और भौतिक वातावरण बदलता रहता है। इस कारण परीक्षण, सीमाएं तय करना और रोबोट की प्रतिक्रिया देखना वास्तविक डिजाइन प्रक्रिया का भाग बनते हैं। लाइन फॉलोइंग इसी विचार को अधिक नियंत्रित वातावरण में रखती है। खरीदे गए लाइन डिटेक्टर मॉड्यूल से रोबोट काली रेखा का पता लगाता है और उसके अनुसार अपनी दिशा ठीक करता है। यह साधारण कार्य दिखता है, पर इसमें लगातार संवेदन, संकेत की पहचान और मोटर में सुधार का चक्र मौजूद है। दोनों परियोजनाएं स्वायत्तता को किसी रहस्यमय बुद्धिमत्ता की तरह प्रस्तुत नहीं करती। वे बताती है कि सीमित उद्देश्य वाली स्वायत्त मशीन स्पष्ट सेंसर इनपुट, साधारण नियमों और लगातार नियंत्रण से बनती है। यह समझ आगे अधिक जटिल रोबोटिक प्रणालियों को सीखने के लिए ठोस आधार देती है। अंत में LED, ध्वनि और कैमरे के जरिए रोबोट की प्रतिक्रिया और दृष्टि बढ़ाना। पुस्तक के उन्नत भाग रोबोट को अधिक उपयोगी और निरीक्षण योग्य बनाने वाले आउटपुट तथा इनपुट जोड़ते हैं। RGB LED और स्पीकर का अध्याय रोबोट को प्रकाश और ध्वनि के जरिए स्थिति व्यक्त करने देता है। उदाहरण के लिए अलग रंग या ध्वनि किसी मोड, चेतावनी या गतिविधि का संकेत बन सकते हैं। यह केवल सजावट नहीं है। भौतिक मशीन के साथ काम करते समय ऐसे संकेत परीक्षण और डिबगिंग को सरल बनाते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता को तुरंत पता चल सकता है कि रोबोट किस स्थिति में है। कंप्यूटर विजन वाला अध्याय पाई कैमरा और OpenCV का उपयोग कर रंगीन गेंद का पता लगाने और उसका अनुसरण करने की दिशा में बढ़ता है। यहाँ रोबोट केवल दूरी या रेखा जैसे सीमित सेंसर संकेतों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कैमरे से प्राप्त दृश्य सूचना को संसाधित करता है। फिर भी पुस्तक का दायरा व्यावहारिक और सीमित रखा गया है। यह सामान्य उद्देश्य वाली दृश्य बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करती, बल्कि आकार और रंग जैसी स्पष्ट विशेषताओं के आधार पर वस्तु पहचान का परिचय देती है। यही सीमा शुरुआती पाठक के लिए उपयोगी है, क्योंकि दृश्य डेटा, प्रोग्रामिंग और मोटर नियंत्रण का संबंध बिना अनावश्यक जटिलता के समझ में आता है। इस चरण तक पहुंचते पहुंचते पाठक ने आउटपुट, सेंसर और कैमरे को एक ही रोबोटिक प्रणाली के पूरक हिस्सों के रूप में देख लिया होता है। निष्कर्ष में लर्न रोबोटिक्स विद रेस्पबेरी पाई उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग और भौतिक निर्माण को एक साथ सीखना चाहते हैं। यह विशेष रूप से नए मेकरों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों, मेकर स्पेस संचालकों और अभिभावकों के लिए उपयोगी हो सकती है, बशर्ते वे पुर्जे जुटाने, तार जोड़ने और परीक्षण में समय देने के लिए तैयार हों। जिन लोगों को केवल तैयार रोबोट चलाना है, उनके लिए किट अधिक त्वरित विकल्प हो सकती है। लेकिन जो यह समझना चाहते हैं कि रोबोट वास्तव में कैसे काम करता है, उन्हें इस पुस्तक की निर्माण केंद्रित पद्धति अधिक लाभ देगी। पाठक पाइथन के आरंभिक प्रयोग, GPIO नियंत्रण, मोटर और सेंसर के साथ काम, शक्ति संबंधी सावधानियां और कैमरा आधारित प्रयोगों का संयुक्त अनुभव प्राप्त करता है। इसकी अलग पहचान विषयों के चयन में नहीं, उनके क्रम और एकीकरण में है। कई शुरुआती पुस्तकें या तो प्रोग्रामिंग पर केंद्रित रहती है या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोग प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक एक निरंतर विकसित होते रोबोट के जरिए दिखाती है कि सर्किट, शक्ति, कोड और यांत्रिकी मिलकर परिणाम बनाते हैं। बाधा परिहार, लाइन फॉलोइंग और रंगीन वस्तु का पीछा करने जैसी परियोजनाएं सीखने को ठोस लक्ष्य देती है, जबकि सोल्डरिंग, प्रतिरोधक और स्टार्टअप पर प्रोग्राम चलाने वाले परिशिष्ट आगे स्वतंत्र प्रयोग करने में मदद करते हैं। इसलिए इसका मुख्य लाभ किसी एक तैयार रोबोट से अधिक अपने अगले हार्डवेयर प्रोजेक्ट को समझकर बनाने की क्षमता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैक टिमन्स ब्राउन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।